Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Sonu Sood.
धन्यवाद अनुभा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य. भट्टाचार्य नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू.
और अब हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी.
थैंक यू सोनू. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इन आंध्र प्रदेश. विल इनॉग्युरेट अदर प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 2 लाख करोड़ रुपीज इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज एंड नियरली फ्लैट. सेंसेक्स शेड्स 51 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस बिलो 23,700. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल कंटिन्यूज अपटिक. ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स एट $77.21 पर बैरल.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में आंध्र प्रदेश में पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का शिलान्यास करेंगे. 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की अन्य परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक बिना किसी खास बदलाव के हुए बंद. सेंसेक्स 51 अंकों की गिरावट में रहा. निफ्टी 23,700 के नीचे आ गया. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़त जारी. ब्रेंट क्रूड $77.21 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.
Prime Minister Narendra Modi will dedicate and launch projects worth over 2 lakh crore rupees at Visakhapatnam in Andhra Pradesh in a short while from now. Mr. Modi will lay the foundation stone for the state-of-the-art NTPC Green Energy Limited's Green Hydrogen Hub project at Pudimadaka near Visakhapatnam. This will be the first green hydrogen hub under the National Green Hydrogen Mission. The project entails an investment of approximately 1,85,000 crore rupees. The project will help achieve India's non-fossil energy capacity target of 500 gigawatt by 2030. The Prime Minister will also dedicate to the nation, lay the foundation stone and inaugurate various railway and road projects worth over 19,500 crore rupees in Andhra Pradesh. These projects include foundation stone laying of South Coast Railway headquarters at Visakhapatnam. These projects will reduce congestion, improve connectivity and enhance regional social and economic growth. Mr. Bhattacharya, even as we speak, we can see that the Chief Minister of Andhra Pradesh, Mr. Chandrababu Naidu, is addressing the rally right now. And after him, Prime Minister Modi will be addressing the rally and then go on to inaugurate the various projects. The most important project here is the NTPC's state-of-the-art Green Hydrogen Hub project. How important is this project, you know, from the point of view of India? Aim to achieve net zero by, you know, by 2030.
This is a very important project, as you rightly pointed out. India's energy transition goals will be critically dependent, among many other things. This will be a key project. Now, as you know, that green hydrogen is a new technology. It requires huge investment, and as you said, that almost 1.8 lakh crore of money is being dedicated to this project. It is being set up by a state-owned enterprise, NTPC. It also means that necessary steps are being taken to achieve make those requirements for India's energy transition and climate change and adaptation processes. So I think this is a good beginning, and as you know, that the railways as well as other projects will also be benefiting from this, and this is a matter of time that these projects will start yielding fruit for India's climate change and climate adaptation program.
Mr. भट्टाचार्य, एडवांस टेक्नोलॉजी की अगर हम जो हम बात करते हैं, बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, उसमें इस तरह के जो ग्रीन हाइड्रोजन या सेमी कंडक्टर्स, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं, उसमें इतना बड़ा स्टेप लेना वो कितना इम्पोर्टेंट है?
आपने एकदम सही कहा कि अगर हम विकसित होंगे तो हमारी जो विकास की जो गति है वो अगर ग्रीन एनर्जी के हेल्प से अगर करें तो हमें जो क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन की जो चैलेंजेस जो होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो 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 एनर्जी जो है, एनर्जी के जो प्रकार जो है, रूप जो है, वो ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं है, पोल्यूशन एकदम नहीं है उसमें। तो अगर हम ग्रोथ को देखें, विकसित होने की जो अगर भावना रखें अपने दिमाग में, अपने प्लानिंग में, तो मुझे लगता है कि ग्रीन एनर्जी जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, ग्रीन एनर्जी हुआ, सोलर एनर्जी हुए, तो ये सारे चीज हमें बहुत बहुत हमें सहायता करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ग्रीन एनर्जी इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट है।
मिस्टर भट्टाचार्य, दिस प्रोजेक्ट, यू नो, द प्रोडक्ट्स दैट आर गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन दिस अंडर दिस प्रोजेक्ट आर ऑल्सो, यू नो, प्राइमरली मेंट फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। सो हाउ इम्पोर्टेंट आर सच प्रोजेक्ट्स फॉर इन, यू नो, सो फॉर इज इन इंडियाज एक्सपोर्ट मार्केट इज कंसर्न, एंड स्पेशली टू डाइवर्सिफाई our exports?
Well, you know, in a sense that India is also critically dependent on earning foreign exchange through its exports, because we do need to bring down or keep under check our trade deficit. So such projects certainly help us in meeting those goals, number one. Number two, such exports also build a lot of cooperation among the countries of the global south, because India has achieved a certain stage of development in green energy which it can share, and it can share the fruit and the benefits of such a technology with other developing countries. So the global south, the south-south cooperation will also get enhanced. Remember, these exports will not really take place to a developed country, yes, like the European countries or the US. They will be taking place mostly to the developing world, Africa or Asia or even Southeast Asia. So therefore, I think there are two dimensions to this project. One is becoming self-sufficient, and two is exporting it to enhance South-South cooperation.
So, जो हम एक ग्लोबल लीडरशिप की बात करते हैं इंडिया के लिए, हमने देखा है हाल के वर्षों में कि कई एरियाज में हमने ग्लोबल लीडरशिप ऑब्टेन किया, स्पेशली ग्लोबल साउथ में। सो आपको लगता है कि ये एक और एरिया है जिसमें अब हम एक बहुत बड़ी स्ट्राइड लेने जा रहे हैं?
बिल्कुल सही, ये एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट एक नया टेक्नोलॉजी है, और इस नए टेक्नोलॉजी में जो हम अगुवाई कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे जो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग में बहुत ये सहायता करेगी, और चाइना भी इसमें काफ़ी आगे जा रहा है, पर भारत ने भी जो ये कदम लिए हैं, मैं समझता हूँ कि ये कदम हमारी जो एक आंतर्जातिक, जो एक हमारी जो एक एक हैसियत है, उसको बढ़ावा देगा।
आइए अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर और देखते हैं वहां कैसा प्रदर्शन रहा। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज उथल पुथल भरे कारोबार के बीच बिना किसी खास बदलाव के बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 51 अंक कम होकर 78,148 पर दर्ज हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19 अंकों की मामूली गिरावट से 23,689 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार में हालांकि रुख काफी नकारात्मक था, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों सूचकांक 1% अधिक की गिरावट में रहे।
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड नियरली फ्लैट इन वॉलेटाइल ट्रेड टुडे। द 30 शेयर इंडेक्स एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स ड्रॉप्ड 51 पॉइंट्स टू क्लोज एट 78,148। सिमिलरली द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 एंडेड मार्जिनली डाउन बाय 19 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,689। द ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस एट बीएसई विटनेस्ड डाउन ट्रेंड। बोथ द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप इंडिसेस लॉस्ट ओवर 1% ईच। in the Sensex index. 16 out of 30 companies locked losses. In the top laggards, Adani Ports slipped almost 1.9%. Ultratech Cement lost more than 1.7% and Larsen & Toubro dropped over 1.2%. Meanwhile, among the top gainers, TCS rose nearly 2%, Reliance added over 1.9% and ITC gained 1.9%. In sectoral indices at the BSE, 13 out of 20 sectors ended in negative territory. In the top laggards, consumer durables shed more than 1.8%, industrials slipped over 1.4%, and capital goods dropped over 1.3%. Conversely, among the top gainers, oil and gas gained over 1.5%, energy advanced over 1.3%, and realty as well as tech both added 0.38% each. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,584 companies declined, shares of 1,389 companies advanced, while shares of 93 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 54 companies hit their 52-week high, while 73 hit their 52-week low.
और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 13 पैसे कमजोर होकर 85.85 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड न्यूनतम समापन स्तर पर बंद हुआ. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 108.98 पर था. अगर हम इस वर्ष को देखें 2025 को, तो काफी वॉलेटाइल रहा है बाजार. हमने खासी तेजी भी देखी लेकिन उसके बाद गिरावट भी देखी और आज भी दिन में समय बहुत गिर गया था नियरली 1,000 points एंड फिर उससे वो रिकवर किया. सो क्या ये वॉलेटिलिटी के क्या कारण है?
देखिए, वॉलेटिलिटी के कारण जो बहुत इंटरनेशनल है और डोमेस्टिक भी, एक जो बहुत बड़ा एक बजट आने वाला है 3 हफ्तों में, और इंटरनेशनल कारण तो मेनली ट्रंप साहब का जो उद्घाटन होगा प्रेसिडेंसी का 20 जनवरी को, वो भी उससे भी काफ़ी एक अनसर्टेनिटी सी पैदा हुई है. अगर आप ये दोनों चीज़ को एक साथ देखें तो ये लगता है कि ये वॉलेटिलिटी जो है वो हमारे साथ चलता रहेगा कई दिन. जैसे आपने कहा कि वॉलेटिलिटी को अगर आप देखें तो दो चीज़ नज़र आती हैं. एक तो है कि अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप को देखें, उसमें काफ़ी वीकनेसेस दिख रही हैं. बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी वीकनेसेस दिख रही हैं. इसका यही मैं उत्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो गेंस जो हुई थी वो ऑलरेडी वो रियलाइज हो चुकी हैं. स्मॉल कैप एंड मिड कैप में जो थोड़ा बहुत फ्रॉथ था वो बाहर आ चुका है और स्टेबिलाइज कर चुका है.
उन्होंने बहुत आउट परफॉर्म
किया था. तो मैं जो आज का स्टॉक मार्केट था, मैं समझता हूँ कि जैसे आपने शुरुआती दौर में कहा कि पूरे 2024 में जो हमें दिखा कि उसी का एक स्वरूप दिखता है हमें.
Mr. Bhattacharya, we are talking about volatility. Sonu said it. You've also talked about it. But given the fact that volatility is going to remain in the markets because of so many factors, which are the sectors do you think which are better, you know, which can better withstand this volatility in the coming days, in the coming weeks and months?
Well, since we talked about the beginning of this program, about inauguration of infrastructure projects, now infrastructure sector is going to be a sector that will continue to be loved by the stock market because there's the money is coming in, because the kind of market it is operating in, which is a deficit market, so therefore there is always money to be made provided it is run efficiently, and India's infrastructure companies are by and large run efficiently. So I think the infrastructure sector is going to be an area where investors should be there for the long term gains, not for the immediate short term gains. The other sector is that if you see the latest GDP numbers,
yes,
you see that there is some sort of a nascent revival of consumer demand.
Yes.
Now, if that consumer demand is maintained, then I would say that the FMCG sector, and you see today's ITC stock that is bounced back, and I have every reason to believe that the ITC stock bounce back is something to do with the consumer demand revival scenes that you've seen in the GDP numbers for the last quarter.
Mr. Bhattacharya, कल से रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है क्वार्टर थ्री का, एंड हमने देखा कि आज आईटी सेक्टर में काफी तेजी दिखाई दी. शुरुआत में थोड़ी गिरावट थी लेकिन फिर उसके बाद उसी ने, दैट वाज वन ऑफ द सेक्टर्स विच रिवाइव द एंटायर मार्केट. टीसीएस में लगभग 2% का उछाल आया. सो क्या आपको लगता है, आशाएं हैं बाजार को इन रिजल्ट से, आईटी कंपनी से भी और पूरे रिजल्ट सीजन से?
दो चीज आईटी सेक्टर की आपने बात की, दो चीज आपको ध्यान देना होगा। एक तो है कि जो शुरुआती दौर में, जो साल के शुरू में जो H1B वीसा के ऊपर जो एक डर जो था, वो डर चला गया है, दैट इज डिसअपीयर्ड बाय एंड लार्ज। द सेकेंड इज दैट जो आईटी सेक्टर पिछले साल 2024 में ज़्यादा अच्छा उसने परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, और उसी का मेरे ख्याल से कैचअप आपको इस साल देखने लगेगा। और उनकी जो एक्सपोर्ट्स पर्टिकुलरली द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के जरिए, मुझे लगता है कि रिवाइवल एक उसी का एक आज निदर्शन।
शायद रुपी के लेवल से भी,
रुपी के लेवल से भी जरूर, आपने एकदम सही कहा। रुपी के जो करेक्शन, जो रुपी का करेक्शन जो पिछले दो तीन हफ्तों में हमने देखा है, उससे भी एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस में एक आशा की किरण जरूर दिख रही है।
मिस्टर भट्टाचार्य, यू मेंशन द GDP फिगर्स विच हैव द एस्टिमेट्स विच केम आउट यस्टरडे। With the union budget just a few weeks away, what measures should the government be taking or can take to revive, to spur growth now?
Well, I think there is need for boosting investment, because there are clear signs that private consumption is growing. It grew by almost 7% in the last quarter. It needs to be propped up, certainly. So therefore, if there is need for any specific targeted incentives for the middle class, middle India, to boost consumption, that would be one. But the most important thing would be, without losing the advantage of a consolidated fisc, which is the gap between the government's expenditure,
yes,
and revenue being kept under tight control of not more than 4.5% of GDP, which is the long-term target, medium-term target that the finance minister has kept. While keeping that, you need to encourage investment in a manner that the private sector, which has been largely absent in this sector, so the private sector investment should be encouraged with all necessary incentives.
And before we go further in the program, let's go live to Vishakhapatnam, where Prime Minister Narendra Modi is at the moment addressing a public rally.
Bharat bhi viksit rashtra banega. इसलिए आंध्र का विकास ये हमारा विजन है, आंध्र के लोगों की सेवा ये हमारा संकल्प है।
मित्रुलारा मन आंध्र प्रदेश।
That was Prime Minister Modi addressing a public rally in Vishakhapatnam, where he has dedicated to the nation today projects worth over 2 lakh crore rupees.
In fact, उन्हीं से जुड़ा हुआ उन्होंने विकसित राष्ट्र की बात की। विकसित राष्ट्र पर बहुत बल है वर्तमान सरकार का। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अनुभा ने पूछा बजट के बारे में, उसी तर्ज पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है February 5-7, उससे आपको क्या आशाएं हैं?
देखिए, ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है, वो स्टेट सेंटर कोऑपरेशन की बात की है, क्योंकि वो कह रहे हैं आंध्र प्रदेश का जो भूमिका रहेगा वो हमारे देश को विकसित बनने में सहायता होगा। मैं इसमें एक उनकी जो इंगित जो है, चिन्ह जो दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सेंटर के साथ स्टेट को कोऑपरेट करके ही एक भारत, विकसित भारत बन सकता है। ये बहुत बड़ी एक चुनौती और एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि भी मैं मानता हूँ। और पिछले बजट में आपको याद होगा कि निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा था कि एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क सेंटर और स्टेट के साथ मिलकर बनाना है। मैं जो आज देख रहा हूं, वही उसी का प्रतिफलन आज मैं यही आज के जो 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 मैं देख रहा हूं।
और आइए फिर से चलते हैं, आपको लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं रैली को।
सुनो, देर इज
एनडीए प्रभुत्वं आंध्र प्रदेश రాష్ట్రంతో పాటు భుజంతో భుజం తోడై ముందుకు నడుస్తుంది, అందుకే లక్షల కోట్ల పదకాలతో।
What we were hearing just now was probably the translation, Telugu translation of the Prime Minister's address to the people over there, and now he started speaking again।
करोड़ रुपीस से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। ये प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश को विकास को नई ऊंचाई देंगे. मेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश समेत पूरे देश को बधाई देता हूं. साथियों, आंध्र प्रदेश अपने इनोवेटिव नेचर के कारण आईटी और टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा हब है.
That was Prime Minister Narendra Modi in Vishakhapatnam. He was talking about innovation and IT. So let's take the next story, which is in a way connected with what he was talking about. The Ministry of Electronics and Information Technology today announced that India AI, an independent business division under the Digital India Corporation, has signed a memorandum of understanding with Microsoft to drive the adoption and development of artificial intelligence AI in India. As part of the MOU, Microsoft and India AI together will skill 500,000 individuals, including students, educators, developers, government officials, and women entrepreneurs by 2026. They will also establish an AI center of excellence called AI Catalysts to promote rural AI innovation and support 100,000 AI innovators and developers through hackathons, community building solutions, and an AI marketplace. Yesterday, Microsoft had announced plans to invest $3 billion in cloud and AI infrastructure in India over the next 2 years, including the establishment of new data centers. The tech giant also announced to train and skill 10 million people in AI by 2030. Mr. Bhattacharya, how important is this collaboration between India and Microsoft? This announcement coming from Microsoft that, you know, it is going to invest $3 billion in cloud and AI infrastructure and train people.
Well, you know, there are three things that have come out very clearly. One is the recognition once again, and that AI and machine learning are two areas that will going to determine the nature and the trajectory of growth and development in the next few decades. And that Microsoft, one of the leading companies, tech companies in the world, have decided, and remember that Microsoft is led by an Indian. So they decided to come and invest in India is a positive development in my mind. And number two, that Microsoft has decided to invest money, so, you know, put its foot where the mouth is. So that's very, very important. And so therefore, it's not a small amount of money, and they're going to invest that. And number three, that they are willing to train people and they go into rural India. So these are three positive signs that will make India's journey in the field of technology a little smoother, faster, and growth-oriented.
And also an acknowledgement of the fact that, you know, India's demographics, our population, the young people, is such that, you know, Microsoft, meet any tech company, they know that they can get those, you know, that kind of talent from India, and they, you know, it is the best place probably right now to
Absolutely.
Invest.
Absolutely. Andhra Pradesh is among the states which export many of its young people to the United States of America
yes.
for training in technology.
And so, shayad jo artificial intelligence se log darte hain, wo dur ho jayega jab zyada se zyada log skilled honge.
Zyada se zyada skilled honge, kyunki artificial intelligence wahi cheez hai jo hum, ye koi jadu ki pudiya nahi hai, jo usko hum control kar sakenge, jo hamari jo samasyaen jo hain, hamare jo challenges jo hain, usko hal kar sakte hain, usko samna kar sakte hain. वही एआई चीज है.
लेते हैं अगली खबर. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि भारत अपनी भौगोलिक और जनसांख्यिकी विविधता के कारण अपने व्यंजनों को वैश्विक बनाने की क्षमता रखता है. उन्होंने आज ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 का उद्घाटन करते हुए ये बात कही. श्री पासवान ने कहा कि कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत अपने मसालों के लिए आने वाले दिनों में वैश्विक बास्केट बन सकता है.
मूविंग ऑन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड हिज काउंटर पार्ट ऑफ मालदीव्स मोहम्मद अगसन मामून टुडे रिव्यूड द वेरियस फैसेट्स ऑफ बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, including training, regular military exercises, and defense projects. They held bilateral talks in New Delhi. During the talks, both sides reasserted firm commitment to work closely in realizing the joint vision for India-Maldives Comprehensive Economic and Maritime Security Partnership. The defense minister reaffirmed India's readiness to support the Maldives in capability enhancement for defense preparedness, including provisioning of defense platforms and assets to augment its capacities as per its national priorities and in line with New Delhi's neighborhood first policy. The defense minister of Maldives is on a 3-day visit to India.
अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम सूचकांक 1.5% से अधिक के उछाल पे रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.1% से अधिक तेजी दर्ज हुई और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में बहुत ही हल्की बढ़त दर्ज हुई। लेकिन हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक आज 0.8% से अधिक के नुकसान पर बंद हुआ और जापान के निकेई सूचकांक में 0.26% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां मंदी का रुख था। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 0.5% से अधिक की गिरावट चल रही थी। लंदन का फुटसी 0.13% के नुकसान पर था। हालांकि जर्मनी के डैक्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। आपकी टिप्पणी चाहेंगे, चीन में क्या स्थिति बन रही है? चीन में जो स्टिमुलस मेजर्स दिए गए हैं उनसे क्या इंडिकेशन मिल रही है? वहां का इकोनॉमिक स्टेट अभी क्या है और कितना नाजुक है और कैसे वो अफेक्ट करेगा पूरे वर्ल्ड को और इंडिया को?
इस वक्त जो इंडिकेशन जो आ रही है वो चीन की जो स्थिति जो है उतनी नाजुक नहीं है। उन्होंने जो उनकी जो ग्रोथ नंबर्स जो दिख रहे हैं वो हालांकि वो पुराने तरह के जो 8-9% वृद्धि दर थे ये वो नहीं है, वो 5-5.5 या 4 के करीब आ सकती हैं। पर मैं मानता हूं कि तब भी उनकी जो स्थिति जो है उसमें अगर 4-5% की वृद्धि दर हो तो मैं समझता हूँ कि चाइना एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक ताकत अभी भी बनी रहेगी और उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक विश्व में उसका इम्पैक्ट रहेगा। पर सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप साहब का रवैया चाइना के ऊपर कैसा रहेगा और इसीलिए चाइना की जो नर्वसनेस है वो अपनी इंटरनल कारण के लिए नहीं है, वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएस का रुख क्या होता है चाइना के तरफ उसी के लिए ये नाजुक स्थिति लग रही है।
इनफैक्ट व्हाट यू सेइंग अबाउट प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप हु इज गोइंग टू अस्यूम ऑफिस ऑन January 20th जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स फ्रॉम नाउ, इट्स नॉट जस्ट चाइना, ही इज ऑलरेडी मार्क्ड अ लॉट ऑफ कंट्रीज एंड आई guess that is why you know there is this nervousness volatility in world markets as well.
Absolutely, you hit the nail on its head, and you know India does figure in that list but is low yes. down in that list of 10 countries whom he is trying to target.
Moving on, US stocks ended lower yesterday dragged by technology stocks. Also, strong economic data further dampened prospects of rate cuts by the US Federal Reserve. The Nasdaq composite tanked almost 1.9%, S&P 500 shed over 1%, and the Dow Jones Industrial Average ended down by 0.42%. Earlier, the Institute for Supply Management's Non-Manufacturing Purchasing Managers Index, PMI, climbed to 54.1 in December from 52.1 in November amid strong demand. Let's move to commodities. Oil prices continued their upward trend today as supplies from Russia and OPEC members tightened in intraday trade. Brent crude was trading at around $77.20 per barrel. WTI crude also logged marginal gains to trade at around $74.60 per barrel as per the latest reports.
So crude oil ke prices $80 per barrel se to niche hi bane hue hain, lekin kya kuch upward trend dikhai de raha hai kuch?
ये एक सीजन जो है दिसंबर का महीना है, सॉरी जनवरी का महीना है, और ये विंटर अभी गया नहीं है। विंटर में अभी भी काफ़ी जो डिमांड जो है क्रूड ऑयल के डिमांड वो काफ़ी ऊपर जाने के लग रही है और इसीलिए दाम अभी भी एलिवेटेड पोजीशन है। पर जो ओवरऑल जो फोरकास्ट जो है वो लग रहा है कि क्रूड ऑयल ज्यादा दाम ऊपर नहीं रहेगा।
और चलते चलते बता दें, सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.09% बढ़कर 77,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.17% बढ़कर 90,790 रुपए प्रति किलो पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी 2025 में आपूर्ति वाला सोने का वायदा मूल्य बढ़कर 77,654 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए मिस्टर।
नमस्कार।
एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इन आंध्र प्रदेश, ऑल्सो इनॉग्रेट्स अदर प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 2 लाख करोड़ रुपीज। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज एंड नियरली फ्लैट। सेंसेक्स शेड्स 51 पॉइंट्स। निफ्टी क्लोजेस बिलो 23,700। एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस कंटिन्यू अपटेक। ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स एट $77.21 per barrel. That's it in this edition of Market Mantra for now. Good night. Market Mantra.
జగ్మగ్.